मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। तुम बहार हो महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो,
तुम बहार हो,
तुम सृष्टि के श्रृंगार हो,
तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की
तुम बहार हो।
आप जानते समुद्र के एक तट पर एक छोटा सा गांव बसा था और समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े पर्वत पत्थर थे, चट्टाने थी और अक्सर रात के समय जो बड़े बड़े जहाज या नाव उस गांव के पास से गुजरते थे, अंधेरे की वजह से उस चट्टान से टकराते और उध्वस्त हो जाते, कई लोग मर जाते। कई बार ऐसा हुआ कि गांव के लोगों ने देखा कि रात के अंधेरे में जो नाव आ रही है, जो जहाज आ रहे हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो सारे जहाज, वो सारी नावें नष्ट हो रही है और लोग मर रहे हैं। और वो पानी बहुत ठंडा नहीं था, बर्फ वाला पानी था। तो गांव के कुछ लोगों ने, कुछ युवकों ने ये सोचा, क्यों ना यहां एक लाइट हाउस बनाया जाए। और उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत मशक्कत से एक लाइट हाउस उस गांव के पास निर्माण किया। और वो लाइट हाउस काफी बड़ा था, कुछ लोग उसके अंदर ही रहने लगे, वह रहने की भी व्यवस्था थी। और जब जब कोई नाव टकराती, यहां से कुछ लोग कूद जाते और उनको बचाते। और फिर उन्होंने सरकार से सहायता मांगी और वहां पे फिर एक लाइट भी बैठाया, जिसको कहते हैं बीकन अंग्रेजी में, प्रकाश द्वीप या आकाश द्वीप। यहां से लाइट जो कि घूमता था और जो भी जहाज यहां घूमती थी उनको चेतावनी देता था कि यहां चट्टान है, क्योंकि एक तरफ पूरी पूरी बड़ी बड़ी चट्टाने थी, लंबी चट्टाने। और फिर कुछ अलार्म सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया, तो जैसे ही कोई नाव वहां आती और टकराने लगती, एकदम अलार्म जोर से बजता और सब सचेत हो जाते और वो नाव बच जाती। पर उसके बाद में भी यदि कोई नाव टकराती तो ये बहुत सारे लोग यहां जो थे सेवाधारी, वो कूद जाते उस बर्फीले पानी में और नाविक को, मल्लाह को, यहां के यात्रियों को, सबको बचा के यहां ले आते। तो यह ऐसा एक तरफ तो राहत कार्य, बचाव कार्य, और दूसरी तरफ चेतावनी देने का कार्य इस प्रकाश के द्वारा, इस अलार्म सिस्टम के द्वारा चालू था और कार्य बहुत अच्छे से चालू था। एक बड़ा जहाज आया और टकराया चट्टान से, और बहुत सारे लोग यहां जो थे वो कूदे और उनको बचा बचा कर ले आए। पर एक गड़बड़ हो गई, जो लोग इसमें थे उन्होंने इस स्थान को बड़ा गंदा कर दिया, क्योंकि ये जो लोग यहां रहने वाले थे जब यहां रहने ही लगे तो इन्होंने इस स्थान को सजाना चालू कर दिया था। कारपेट बिछाई थी, पर्दे लगाए थे, बिस्तर रखा था और अच्छी अच्छी चीजें वहां रखी थी, क्योंकि यहां रहने ही लगे थे जब इनका घर ही बन गया था, और हर संडे वो मिलते थे, यहीं खेलते थे, पिकनिक करते थे और बहुत कुछ करते थे। पर इस बार जब नाव टकराई और वो जो लोग आए और उन्होंने पूरा गंदे पाव पर्दे खराब कर दिए, वहां उन्होंने किचन भी बनाया था, उस किचन को भी खराब कर दिया वो लोगों ने, वहां का स्टोव भी खराब कर दिया ये जो नए लोग थे। तो इनमें से जो कुछ लोग थे वो थोड़े नाराज हो गए, उन्होंने कहा हम इतना सेवा करते और हमको सब हमारा खराब कर दिया है लोगों ने। तो एक ग्रुप जो था वो नाराज हो गया, थोड़ा एंग्री। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा बहुत बड़ा जहाज आया और वो जहाज टकराया, फिर से लोग जो बचे हुए थे वो कूद पड़े उन सेलर्स को, उन नाविकों को, इन यात्रियों को बचाने के लिए। पर ये जो जहाज था उसके लोग दूसरे देश के थे, दूसरी भाषा बोलते थे, दूसरी संस्कृति के थे, इसके लिए कुछ लोग फिर नाराज हो गए, ये हमारे देश के नहीं, हम इनको क्यों बचाए, ये दूसरे देश के, दूसरी भाषा बोलते, दूसरी सभ्यता, इनको समझ में भी नहीं आता है। कुछ दिनों के बाद मौसम बहुत अच्छा था और परंतु फिर भी एक नाव टकराया, तो कुछ लोग थे हम अपना कंफर्ट छोड़ के क्यों जाए, और पानी इतना ठंडा है और इतने समय से हम कर रहे सेवा कर करके थक गए वो लोग, कहने हम नहीं जाएंगे। और फिर उन्होंने सरकार को भी खत लिख दिया कि ये बहुत हो गया, अभी हम नहीं करेंगे। तो सरकार ने कहा ठीक है, तुम्हारा ये जो लाइट का कार्य है, लाइट दिखाने का, वो चालू रहेगा जो ऑटोमेटिक है, पर राहत कार्य बंद कर दो। तो राहत कार्य बंद हो गया, पर क्योंकि तीन लोग, तीन ग्रुप तो नाराज हो गए, कैसे चलेगा काम, अलग अलग कारण थे हर एक के। परंतु उसमें से एक ग्रुप था, उन्होंने कहा ये छोड़ो, अभी हम एक अपना नया लाइट हाउस बनाएंगे। तो उन्होंने एक नया छोटा लाइट हाउस बनाया और धीरे 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 ये लाइट हाउस इतना फेमस होता गया, इतना फेमस होता गया। और ये जो लाइट हाउस था छोटा वाला, इनका कार्य राहत कार्य था, क्योंकि इनको लाइट पहले से ही यहां उपलब्ध था, पीछे ये उसके आगे बनाया। और ये जो लाइट हाउस था ये बहुत फेमस हो गया। और ये वो कौन लोग थे जिन्होंने ये लाइट हाउस बनाया, ये वो लोग नहीं थे जो उस गांव के थे, ये वो लोग थे जिनको कभी इन गांव वालों ने बचाया था, ये वो नए लोग थे, ये वो यात्री थे, ये वो मल्लाह, वो नाविक थे जिन्होंने कभी इनको इन्होंने इनको बचाया था। वो तो थक गए थे, पर ये नई बैच तैयार हो गई थी सेवाधारियों की, क्योंकि ये खुद कभी टकराए थे, कभी इनके खुद बीवी बच्चे मर चुके थे। तो हमें क्या बनना है, क्या बनना है, लाइट हाउस। लाइट हाउस खुद बनना, या यदि कुछ कोई लाइट हाउस है तो उसको मदद करना, ये दोनों ही महान कार्य है। ये यज्ञ ही एक लाइट हाउस है, सबसे पहले तो परमात्मा का इस संसार में आना ही लाइट हाउस है, उसके कार्य में मदद करना या स्वयं ही लाइट हाउस बन जाना, ये बहुत ऊंचे कार्य है। और लाइट हाउस बनने के लिए क्या चाहिए, सतर्कता। लाइट हाउस बनने, सेवा करने के लिए क्या चाहिए लाइट हाउस के अंदर, किसी भी समय एवर रेडी, क्योंकि कभी भी कोई भी नाव टकरा सकता है, और बहुत सारे भटकती हुई जो नावें हैं उनको राह कौन दिखाएगा, वो कार्य किसका है, लाइट हाउस का है। चेतावनी देने का कार्य किसका है, लाइट हाउस का है। और क्या करता है लाइट हाउस, लाइट हाउस की क्वालिफिकेशंस, शक्तिशाली होना चाहिए। लाइट हाउस वो नहीं कि पानी तूफान सुनामी आया और बह गया। लाइट हाउस अर्थात अचलडोल, लाइट हाउस अर्थात शक्तिशाली, लाइट हाउस अर्थात बहुत ऊंचा होना चाहिए। लाइट हाउस अर्थात जिसका लाइट हमेशा जलता रहे, लाइट हाउस अर्थात हमेशा सतर्क, लाइट हाउस अर्थात रहम दिल, लाइट हाउस अर्थात सबके सेवा की भावना, कल्याण की भावना, लाइट हाउस अर्थात सबको राह दिखाने वाले, आशा की किरण, लाइट हाउस अर्थात आशा की किरण है लाइट हाउस, और लाइट हाउस, लाइट हाउस सदा जलता रहे, लाइट हाउस जिसमें हमेशा लाइट रहे, लाइट हाउस अर्थात पर्वती चक्कर लगाते रहे, अच्छा लाइट हाउस अर्थात आश्रय देने वाला, लाइट हाउस अर्थात रेस्क्यू टीम, लाइट हाउस अर्थात राहत कार्य करने वाला, बचाव कार्य करने वाला, लाइट हाउस अर्थात खुद खुद समस्या अपने ऊपर, खुद कठिनाइयों का सामना करने वाला, खुद मुश्किलातों का सामना करने वाला, दूसरों के बचाव के लिए खुद जलने वाला, जिजुनी सता चंदना से दूसरा से मधुगंध देवा, दूसरों को सुगंध देता है और चंदन के समान खुद घिस जाता है, वो है लाइट हाउस, रोशनी प्रकाश, लाइट हाउस अर्थात प्रकाश, दिया फानूस कंदिल लैंटर्न। लास्ट संडे की मुरली पार्ट टू, चुने हुए महावाक्य, लाइट हाउस बनना है, लाइट हाउस की 10 बातें है उसमें, 10 पैराग्राफ्स पूरी मुरली, चुने हुए है, कोई एक मुरली नहीं है, यहां वहां से ली हुई है। तो क्या बनना है हमको, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, क्या बनना है, स्पिरिचुअल लाइट माइट हाउस, और लाइट हाउस जो होता है वो सिंगल, वो सिंबल है आशा का, वो प्रतीक है, चिन्ह है धैर्य का, वो प्रतीक है, चिन्ह है साहस का, अचल अडोल स्थिति का, विश्वास का, क्योंकि लाइट हाउस अगर देखे, कोई नाव है जो भटक रही है अंधेरे में, कुछ दिखाई नहीं देता है नाव को समुद्र में, कहां किनारा है, कहां पत्थर आएगा, कहां चट्टान आएगी बीच में, पता नहीं चलता है और टकरा जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। टाइटैनिक का क्या हुआ था, टकरा गई थी बीच में, चट्टान आ गई, डूब गई सबसे बड़ी नाव इस संसार की, टाइटैनिक पूरी डूब गई, क्योंकि चट्टान बीच में आ गई, क्योंकि दिखाई नहीं। उसी तरह लाइट हाउस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सागर है और दुखों का सागर है, यहां तो अंधकार ही अंधकार है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है यहां लोगों को, आत्माएं भटक रही है, ऐसी भटकती आत्माओं को एक प्रकाश की किरण दिख जाए तो जीवन नैया समझ जाए। तो बाबा ने कहा, बाप को यदि प्रत्यक्ष करना है, भगवान की प्रत्यक्षता का साधन क्या है, लाइट हाउस बनना, लाइट माइट हाउस बनना। तो इसमें बाबा ने 10 बातें कही है, 10 पैराग्राफ्स। सबसे पहली बात, बाप की प्रत्यक्षता, रेवलेशन। बाप की प्रत्यक्षता कब होगी, जब तुम स्वयं लाइट हाउस बन जाओगे, और परंतु बाप की प्रत्यक्षता से पहले तुम्हें स्वयं में अपनी प्रत्यक्षता करनी है, कैसे, खुद की महिमा गाकर, खुद की ही महिमा गाकर, स्वयं की स्वयं प्रत्यक्षता करो, तब कहीं जाके बाप की प्रत्यक्षता होगी। और खुद की खुद महिमा गाने के लिए 2 चीजें करो, एक तो याद की यात्रा जो है उसको पावरफुल बनाओ, और दूसरा ज्ञान स्वरूप बन जाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आज की मुरली, ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टपकता रहना चाहिए, ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टपकता रहना चाहिए, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। दादी जानकी ने कहा, जाओ किसी भी दादी से पूछो, हम जब यज्ञ में आए तो कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करते थे, ज्ञान के अतिरिक्त तो कोई चर्चा ही नहीं करते थे, जब भी बैठते थे जाओ पूछो किसी भी दादी से। दादी का एक क्लास है 87 का, गीता पाठशाला वालों के लिए, ओम शांति भवन में लिया हुआ, दादी जानकी, उसमें दादी ने कहा है, हम कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे, सब लोग बैठते थे, कभी कोई परचिंतन की बात नहीं, कभी कोई प्रदर्शन की बात नहीं, केवल और केवल बाबा ने जो कहा बस वही और कुछ नहीं, और हमारी बुद्धि में कुछ रहता ही नहीं था दूसरा। ज्ञान स्वरूप बनो, और दूसरा क्या करो, याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्वालामुखी योग, हमारा लक्ष्य, दादी गुलजार ने कभी एक जगह कहा है, ज्वालामुखी योग की पांच चार बातें हैं जो ब्रह्मा बाब उनको बताते थे। सबसे पहला बीज रूप स्थिति, सबसे ज्यादा अभ्यास इसी का करना है क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही है। सारी शक्तियां बीज रूप स्थिति में समाई हुई है और कोई दूसरा अभ्यास ही नहीं है योग का। लंबा लंबा समय बैठ बैठ कर घंटों घंटों एक ही अभ्यास करना है बीज का, शक्तिशाली अभ्यास हो बीज रूप स्थिति का, क्योंकि इस अभ्यास में सारे अभ्यास समाये हुए हैं। इस अभ्यास में कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को सकाश देने की जरूरत नहीं, कहीं फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं, ना सतयुग में उतरने की जरूरत, ना पूज्य स्वरूप ना पूजारी स्वरूप, किसी स्वरूप को याद करने की आवश्यकता नहीं, ना ब्राह्मण स्वरूप। यह सबसे शक्तिशाली स्वरूप है, सारी शक्तियां इस स्वरूप में समाई हुई है, यह सबसे शक्तिशाली योग है। याद करना कि वो मुझे आवाज नहीं चाहिए तो वो स्थान है जहां आवाज नहीं है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए वो स्थान है जहां भीड़ नहीं है, ये खाने पीने के चक्कर से मुझे मुक्त होना है ये वो स्थान है जहां ना खाना है ना पीना है, अभोक्ता करता हूं, ऐसे मन में संकल्प उत्पन्न करने हैं। ये वो स्थान है जहां कुछ नहीं करना है, केवल बैठना है। ये वो स्थान है जहां मैं संडे की मुरली में चार वरदान थे, समान समीप दिल तख्त नशीन रूहानी नशा। ये वो स्थान है जहां मैं भगवान के समीप हूं, क्या इससे भी बढ़िया कोई स्थिति हो सकती है? क्या भगवान के साथ रहना इससे भी अच्छी कोई दूसरी अवस्था है संसार में? भगवान के साथ रहना यही सबसे बड़ी स्टेज है, इससे बड़ी प्राप्ति कोई है संसार में? कोई भी नहीं हो सकती। समान समीप दिल तख्त नशीन और रूहानी नशा। तो दादी ने कहा यह पहली स्टेज है ज्वालामुखी योग के लिए। दूसरी उन्होंने कहा, ब्रह्मा बाबा कहते थे, फरिश्ता। तीसरा मनन और चौथा रूरियान। ये चार स्टेजेस में ही सारे दिन भर रहना है, अमृत वेला बीज रूप में, मनन में बाद में, या तो दिन भर फरिश्ता में। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो कम से कम मनन तो करते रहो, चलो योग लग ही नहीं रहा है, व्यर्थ चल रहा है पूरा, तूफान आ गया है व्यर्थ का, नाव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, टकरा रही है व्यर्थ के पत्थरों पर चट्टानों पर, क्या करो? मनन करो। कहां से मनन करो? मुरली का पॉइंट उठाओ और सोचो ये क्यों कहा। मुरली का कोई भी पॉइंट उठाओ और उसके बारे में सोचो, भक्ति मार्ग में ये है। आज क्या कहा, क्या है भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में क्या है आज की मुरली से? आज की मुरली से, आज की मुरली से चलो पढ़ना। धक्के तो है ही, थक जाते थो जाते, और क्या है भक्ति मार्ग में? तो कहां थे हम? सबसे पहली बात प्रत्यक्षता। तो बाप की प्रत्यक्षता से पहले स्वयं की स्वयं महिमा करो और स्वयं की प्रत्यक्षता करो। उसके लिए क्या चाहिए? खिटखिट सुनते। खिटखिट अर्थात ये है, खिटखिट अर्थात, खिटखिट अर्थात लड़ाई झगड़ा, अर्थात खिटपिट। ये खिटखिट है, लड़ाई झगड़ा अर्थात खिटपिट। आई एम आस्किंग खिट खटखट, क्या खटखट नहीं, ये नया बनाया, खिटखिट अर्थात आवाज नहीं, कॉन्ट्रोवर्सीज, खिटखिट अर्थात अपोजिंग आइडियाज, खिटखिट अर्थात दो विरोधी मत, खिटखिट अर्थात कॉन्ट्रोवर्सीज, विवाद। भक्ति मार्ग में दो अपोजिट बातें, कोई ये कहेगा तो कोई वो कहेगा, कोई कहेगा ऐसा करो कोई कहेगा वैसा करो, एकदम अपोजिट। बाकी ज्ञान मार्ग की भी खिटखिट है, वो अलग वो अलग बाकी इधर तो खिटखिट है। खिटखिट अर्थात लड़ाई झगड़ा नहीं, खिटखिट अर्थात अपोजिंग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। भक्ति में अपोजिंग आइडियाज है, उसको कहते हैं खिटखिट। खिटपिट अर्थात वो है हिंदी शब्द, खिटखिट सिंधी। ये पहली बात। दूसरा लाइट हाउस अर्थात हमारी आंखें कैसी हो, जो लाइट हाउस होगा वो पहले खुद को प्रत्यक्ष करे, उसके लिए पावरफुल योग करे और ज्ञान स्वरूप बने। और दूसरी बात, सेकंड पैराग्राफ, आंख, आंख में क्या बोला, हमारी आंख क्या क्या हो, आंख का गोला कि लाइट का गोला, हमारी आंखों से बिंदु स्वरूप बाप, हमारी आंख से ज्योतिर स्वरूप ज्योतिर्मयी बाप प्रत्यक्ष हो। आत्माओं को चाहना है, एक झलक लाइट की देखना चाहती है, साक्षात्कार हो जाए, थोड़ा सा साक्षात्कार हो जाए बस, थोड़ा सा साक्षात। इतने दिनों से हनुमान चालीसा, जय 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 हनुमान, ज्ञान गुण सागर, कभी तो दिखा एक लाइट की झलक, बस एक लाइट दिख जाए, थोड़ा सा प्रकाश। तो उनकी चाहना क्या है? और ये काम किससे होगा? तुम्हारे नैनों से। ये काम किससे होगा? रूहानी नजरों से। ये काम किससे होगा? तुम्हारे आंखों से। तुम्हारी आंखें लाइट हाउस अर्थात जिसकी आंखें क्या करे, बाप को प्रत्यक्ष करे, जिसकी आंखें लाइट का गोला बन जाए। तो ये दूसरा काम है लाइट हाउस की, सेकेंड क्वालिफिकेशन। तीसरी क्वालिफिकेशन डिटैचमेंट, न्यारापन। किसमें न्यारा? कर्म से न्यारा, रमणीकता में न्यारा, संबंध में न्यारा, संपर्क में न्यारा, सेवा में न्यारा। ऐसा नहीं कि हम सेवा में इतना इन्वॉल्व हो जाए कि न्यारा ही ना बन पाए। सेवा में इन्वॉल्व होना बहुत अच्छी बात है, पर न्यारा बनना भी बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा अति में एक सेकंड में अंत कर दो, यह है लास्ट समय का पुरुषार्थ। अति अर्थात बहुत बिजी जब है तब एक सेकंड में अंत कर दो उसका, फुल स्टॉप, यह है पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ चाहिए, डिटैचमेंट का पुरुषार्थ है सबसे बड़ा। जो जितना डिटैच है वो उतना शक्तिशाली है, या जो जितना स्वयं को हर बात से डिटैच कर सकता है। अभी अभी भाषण दिया, भाषण से भी डिटैच, मुझे पता ही नहीं किसने दिया ये। अभी अभी सेवा की, मुझे पता ही नहीं है किसने की। अभी अभी दिन रात मेगा प्रोग्राम किया, प्रोग्राम पूरा होते ही ऐसे बैठ गए कि पता नहीं वो किसी भूली बिसरी बातें है, हमको कुछ नहीं पता, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। इतना डिटैच, यही सबसे बड़ी एबिलिटी है, यही योगी के लक्षण है। और अभी अभी योग, बिल्कुल इच्छा ही नहीं है नीचे आने की, एकदम साइलेंस में और फिर सीधा वाचा में, यह भी डिटैचमेंट है, यह भी एक अलग प्रकार का डिटैचमेंट है। पर इसकी ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, ये करना मत, वो दूसरा ही चालू रखना। पर ये भी चाहिए, एक तरफ बहुत योग, उस दिन कहा ना वो विज्ञान है, ये ज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान, ऊपर नीचे होते जाना रहना चाहिए। तो वो डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। विवेकानंद ने कहीं कहा है, एट वन मोमेंट यू आर इन द फील्ड, एट वन मोमेंट यू आर इन द फॉरेस्ट, एट वन मोमेंट यू आर डूइंग यू आर वर्किंग फॉर द पुअर, एट अनदर मोमेंट यू आर कमिंग आउट एंड वर्किंग इन द एंड वर्शिपिंग इन द टेम्पल, एट अनदर मोमेंट यू आर गोइंग इन द फॉरेस्ट एंड गेटिंग ड्राउंड इन समाधि। एक पल अभी अभी खेत में काम कर रहे हो, वहां से निकलो, दूसरे पल किसी गरीब की सेवा कर रहे हो, वहां से निकलो, मंदिर में जाओ पूजा कर रहे हो, वहां से निकलो, जंगल में जाओ और समाधि में खो जाओ, डिटैच्ड। इधर से भी डिटैच, उधर से भी डिटैच, इधर से भी डिटैच, उधर से भी डिटैच, कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं है। ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया और सबसे अलग हो गए। परंतु हमारा ऐसा है, ज्यादा सेवा कर ली तो सेवा में बड़ा याद करते सेवा को, भाषण दिया तो क्या क्या बोला उसको याद करते हैं, ये बोला वो बोला ये बोला वो बोला। कुछ भी सेवा करो अच्छी तो उसकी क्या क्या सफलता हुई उसको याद करते हैं, वो भी चलो ठीक है। परंतु योगी अर्थात डिटैच्ड, न्यारापन, इस न्यारापन को लाओ। तो लाइट हाउस अर्थात सबसे पहला बताया, खुद की प्रत्यक्ष खुद खुद में करो। लाइट हाउस अर्थात जिसके नयन लाइट का गोला, लाइट हाउस अर्थात डिटैच्ड। चौथा, लाइट हाउस अर्थात साइलेंस। प्रत्यक्षता के जो नगाड़े बजेंगे वो मुख से नहीं बजेंगे, जब मुख के बंद होंगे तब बजेंगे, वो साइलेंस के नगाड़े होंगे। कितनी बड़ी बात कर दी, ये विजय होगी किसकी, किस पर? साइंस पर साइलेंस, ये साइंस हार जाएगी। कल भी देखा था, साइंस की सत्ता धराशायी होगी एक दिन और साइलेंस की सत्ता ऊपर उठेगी। इस साइलेंस का कितना अनुभव है, साइलेंस। साइलेंस सबसे बड़ी पावर है संसार की। जो साइंस इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, भपका, फॉल ऑफ पॉम्पे, गिरेगा एक दिन, राइज ऑफ साइलेंस एंड फॉल ऑफ साइंस, ये कहानी किसकी है? राइज ऑफ साइलेंस और फॉल ऑफ साइंस की, उत्थान और पतन होगा। तो साइलेंस की आवश्यकता है। तो लाइट हाउस अर्थात साइलेंस, साइलेंस की भी तपस्या करनी है, मौन की भी भट्टी करनी है, और ये आंतरिक भट्टी है, इसमें किसी दिखावे का संबंध नहीं, किसी बैच का संबंध नहीं है, किसी आयोजन का संबंध नहीं है, हमारा 4 दिन है, हमारा 5 दिन है, इसका भी संबंध नहीं है, रहना ही इसमें है, बीच में खाली वाणी में आना है, निरंतर ये भट्टी नीचे चालू रहे, इस भट्टी से ऊपर ऊपर केवल बोल के लिए आना है, क्योंकि यहां सेवा करनी है, इसलिए, क्योंकि यहां नाव आ रही है और टकरा रही है, नहीं तो लाइट हाउस में बैठ के भी रह सकते थे वो। पहला ग्रुप था बहुत परेशान, तीसरा ग्रुप था वो परेशान इसलिए था क्योंकि हमको अपना कंफर्ट छोड़ के जाना पड़ता है, क्यों जाए, क्यों बर्फीले पानी में कूदे, डूबना है डूबे, हम क्या करें, आना ही नहीं था नाव से इस तरफ, ऐसे भी तर्क दिए जा सकते, शांति से बैठते थे घर में, क्यों निकले। तो लाइट हाउस अर्थात जो दूसरों की मदद करे पर स्वयं साइलेंस में रहे, ये सबसे बड़ी पावर, द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ काम आर टू बी काम, द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर इज टू बी काम। शक्ति का सबसे बड़ा अभिव्यक्ति जो है, शक्ति की अभिव्यक्ति, वो तब होगी जब व्यक्ति शांत हो जाएगा, अंदर से शांत हो जाओ। तो चौथा साइलेंस, पांचवा शक्ति कुंड, क्या कहा हमने, शांति कुंड, शांति कुंड, क्या उदाहरण दिया, जैसे चारों ओर आग लग रही है और उसमें कोई एक जगह है जहां पर ठंडी है, जहां पर शांति है, तो सब लोग शीतलता है, वहां सब लोग भागेंगे, वैसे तुम भी क्या हो, शांति कुंड हो, जहां जहां बाबा का सेवा केंद्र है, जहां पर भी शांत स्वरूप बच्चे रहते हैं, वो क्या है, शांति कुंड। तो शांति कुंड स्वयं ही बन जाना है, जब स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे तब बाप तुम्हारी परिक्रमा करेगा, अभी तुम बाप के शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो। तो शांति कुंड, शांति स्तंभ, ये है प्लान। उसके बाद में बाप सम, ब्रह्मा बाप समान बेहद के ताजदारी, ब्रह्मा बाप समान बेहद के ताजदारी, यहां क्या कहा बाबा ने, कौन सी बातें कही है यहां, ब्रह्मा बाप समान बेहद के ताजदारी, लाइट माउट माइट फैला, और ब्रह्मा बाप समान बेहद के ताजदारी, क्या कहा है, जो निराशा में है उनको आशा की किरण दो, जो निराशा में है उनको क्या करो, आशा की किरण दो उनको, ये काम तुमको करना है, बड़ा काम है। और क्या कहा है यहां, सभी की उंगली ऊपर की ओर है, तो यहां भगवान की जो प्रत्यक्षता है, क्या कहे लोग, बहुत सारी अलग अलग वाक्य है यहां पर, क्योंकि कोई एक मुरली नहीं है, इसके लिए कोई क्रम नहीं है, इसमें टुकड़ा टुकड़ा है सारा, एक लाइन यहां से ली, एक लाइन वहां से ली, एक लाइन इधर से, एक लाइन उधर से, बना बना के ये पूरा बनाया। तो एक तो ब्रह्मा बाप समान क्या करना है, ताजधारी बनना है, दूसरा बताया आशा की किरण देनी है आत्माओं को, और क्या बोला, जैसे उंगली दिखाते वैसे सबकी उंगली ऊपर की ओर हो जाए, और कमजोर आत्मा को शक्ति, और एक कोई बात है याद नहीं आ रही है, पर और एक बात है यहां पर। तो ब्रह्मा बाप समान क्या करना है, बेहद के ताजधारी बनना है, तो लाइट हाउस अर्थात ब्रह्मा बाप के समान। उसके बाद में बाप की प्रत्यक्षता, ये एक दूसरा पॉइंट है, सेकंड पैराग्राफ है उसके आगे का। यहां कहा भारत के लिए, जैसे क्या प्रत्यक्ष हो जाए कि भारत ही अवतरण भूमि है, क्या प्रत्यक्ष हो जाए कि वो जो तारामंडल है वो यहां है, यहां ही सूर्य है, यहां ही चंद्रमा है, यहां ही तारे है और यहां ही तारामंडल है, तो वहां जो ऊपर दिख रहा है वो क्या हो जाए, नीचे आ जाए, ये प्रत्यक्ष हो जाए, प्रत्यक्षता, ये प्रत्यक्षता हो जाए कि ये सूर्य जो है यहां उदय हुआ है, ज्ञान सूर्य इस साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, ये बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद में है बैलेंस, लाइट हाउस अर्थात बैलेंस रखने वाला, किस चीज का बैलेंस, तपस्या और निरंतर सेवा का बैलेंस, हाँ वो उसमें भी आएगा। तो एक तरफ है तपस्या और दूसरा है निरंतर सेवा, मतलब अपनी योग भी चालू रहे और एक तरफ सेवा भी चालू रहे, इधर तपस्या भी चालू रहे और दूसरा सेवा भी, ऐसा नहीं कि हम तो तपस्या करेंगे सेवा छोड़ दी, सेवा में इतना इन्वॉल्व हो गए कि तपस्या गुम हो गई। अभी वर्तमान समय सबसे बड़ा त्रुटि जो है पुरुषार्थ की वो ये है कि सब लोग सेवा में इतना बिजी है कि तपस्या खो चुकी है, उनके लिए तपस्या के लिए टाइम ही नहीं है, तपस्या अर्थात समझते बस ये सेवा ही तपस्या है, ये मीडिया ही तपस्या है, मीडिया तपस्या नहीं है, समस्या तो नहीं है पर तपस्या भी नहीं है, सेवा है वो, तो सेवा का इतना भयंकर विस्तार है किसी में खो गए। बाबा ने कहा बैलेंस, बैलेंस मतलब दोनों चीजें समान होनी चाहिए, अगर एक बहुत ज्यादा जा रहा है तो अभी कुछ समय उसको कम कर दो और दूसरे को बढ़ाओ, तब बैलेंस होगा, क्योंकि ऐसा हो गया है तो बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं होगा वो, तो तपस्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो लाइट हाउस अर्थात क्या, बाप की प्रत्यक्षता के लिए क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। उसके बाद में बाप की प्रत्यक्षता के लिए कहा शक्ति स्वरूप जो है वो आगे रहे, जब शक्ति स्वरूप आगे रहेगी अपने आप बाप प्रत्यक्ष होगा, शिव शक्ति जब आगे है तब अपने आप बाप प्रत्यक्षता है। यहां पे वो माइक वाले भी बात कही, माइक वही काम करे जो वो उधर मीडिया करती है, ठीक है, तो शक्ति को आगे रखना, और यहां कहा बैलेंस, उसके बाद कहा, उसके पहले कहा प्रत्यक्षता, उसके पहले कहा ब्रह्मा बाप समान, उसके पहले कहा शांति कुंड, उसके पहले कहा साइलेंस, उसके पहले कहा न्यारा बन जाना। वो न्यारापन की बात एक्चुअली दो इसमें है, हमने उसको एक कर दी, और वो इवन जो आंख वाली बात है वो दो इसमें है, उसको एक कर दिए, तो आंख की बात हमारी आंखें क्या करे। उस दिन एक काम दिया था, यहां दिया था या वहां दिया था, आंखों द्वारा होने वाले पाप, वहां दिया था हॉल में, आंखों द्वारा होने वाले पाप। अब दूसरा प्रश्न है आंखों द्वारा होने वाली सेवाएं कौन कौन सी है, दृष्टि वाली, दृष्टि क्या क्या सेवा कर सकती है, हमारी दृष्टि क्या करे, हमारी आंखें, एक है आंख, एक है नयन, एक है दृष्टि, एक है चक्षु, एक है नजर, एक है नेत्र, एक है विजन, एक है आईज, आप बताओ इन सब में क्या अंतर है। स्थूल क्या क्या है, स्थूल है चक्षु, नहीं चक्षु भी सूक्ष्म है, स्थूल है आंखें, नजर, नेत्र स्थूल है, आंखें और आंखें, नेत्र और आईज, ये क्या है, स्थूल है, नजर थोड़ा अलग है, सूक्ष्म है, दृष्टि उससे भी सूक्ष्म है, चक्षु ज्ञान चक्षु, वो एकदम अंतर चक्षु, आंख, आंख आत्मा की जो आंख है उसको चक्षु कहते हैं, या थर्ड आई वो चक्षु है, और दृष्टि, अब ये क्या है, ये दृष्टि इन सबसे ऊपर है, दृष्टि वो दृष्टिकोण अलग, दृष्टिकोण नहीं, दृष्टि, दृष्टि अर्थात ये अगर आंख है, ये पर्दा है और इधर आत्मा है, आत्मा जो देख रही है वो दृष्टि है, आंखें जो देख रही है वो शायद नजर है, ये नेत्र है, ये आंखें है, ये आईज है, ये जो देख रही है ये विजन है, पर जो आत्मा द्वारा देखा जा रहा है वो है दृष्टि, और आत्मा जो है वो चक्षु, इसको ही चक्षु कह सकते हैं, आत्मा के चक्षु जो देखती है वो दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, आत्मा जो देख रही है वो दृष्टि, तो ये सब शब्द है। तो लोचन, अभी नए नए हैं बहुत, फिर तो लोचन नयन लोचन। तो बिनाई, एक होता है बिनाई आंखों की रोशनी, उर्दू शब्द बिनाई तो रोशनी। तो कितनी बातें हो गई, एक कोई तो रह गई है शायद, नौ हो गई, एक रह गई। सफलता के नगाड़े वो उसी में आ गए, नहीं सफलता के नगाड़े उसी में आ गए, एक कोई तो बात रह गई है। एक तो पहला प्रत्यक्षता, दूसरा आंखें, तीसरा डिटैचमेंट, चौथा साइलेंस, पांचवा शांतिकुंड, ब्रह्मा बाप समान ताजधारी, फिर भगवान की प्रत्यक्षता। हाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो यहां पे बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, निगेटिव किचड़ा है। निगेटिव क्या है, किचड़ा। कितनी बड़ी बात कह दी। इसलिए क्या, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वायुमंडल, पॉजिटिव वृत्ति, पावरफुल वाइब्रेशन, पावरफुल वृत्ति, पावरफुल वाइब्रेशंस हो तब क्या होगा, वायुमंडल में रहम दिल होगा, तब क्या होगा, वायुमंडल में शुभ भावना, शुभ कामना होगी, शुभ संकल्प होंगे वायुमंडल में। नहीं तो जहां जिस डिपार्टमेंट में लोग निगेटिव ज्यादा बात करते हैं, जिस सेंटर पे निगेटिव बात करते हैं, जिस घर में निगेटिव बात करते हैं, मधुबन के किसी एक ब्रांच में जहां निगेटिविटी है वहां वो निगेटिविटी फैलती है। लोग निगेटिव चर्चा करते हैं, निगेटिव वायुमंडल है, वहां रहम दिल नहीं है, वहां टांग खींचना है। टांग खींचने से अच्छा हाथ खींचो। कोई गिर रहा है उसकी और टांग खींचने से अच्छा ऊपर से उसका हाथ खींचना है तो ऊपर आ जाए, सपोर्ट देना। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट बाबा ने कही यहां पर, वायुमंडल में क्या हो, पॉजिटिविटी हो, निगेटिव क्योंकि खींचड़ा है। चाहे कैसा भी कितना भी निगेटिव वायुमंडल हो, बाबा को आज तक कभी निगेटिव बोलते हुए सुना है क्या? अव्यक्त बाप दादा को
वो अच्छा लगता है।
अव्यक्त बाप दादा, कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें होगी, 84 के हंगामे हो गए, कोई निगेटिव ऐसा दिखाई दिया उसमें नहीं, क्योंकि वो जो बोलता है साक्षी होकर बोलता है, सत्य परिस्थिति का वर्णन करता है, निगेटिव नहीं दिखता है। पर उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, उसमें ब्लेम गेम ज्यादा होता है, दोष छिद्रान्वेषण होता है, फॉल्ट फाइंडिंग होता है। हम में और उसमें यही अंतर है। तो ये ऐसी 10 बात है किसकी, लाइट हाउस की। तो प्रत्यक्षता के लिए क्या बनना है, लाइट माइट हाउस। जब हमारी प्रत्यक्षता होगी तब उसकी प्रत्यक्षता होगी, शक्तियों की प्रत्यक्षता तो शिव की प्रत्यक्षता तब होगी। तो ऐसा स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस बनाने, और आज की मुरली से एक दो बातें, ज्ञान टपकता रहे, टाइम वेस्ट ना हो, निद्राजीत बनना है, और ज्ञान का चिंतन चालू रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सारे दिन भर पिनकी नहीं होनी चाहिए, उबासी पिनकी, उबासी या मतलब बुद्धि भटक रही। हाँ भटकने वाली बात है। खुद की महिमा करता रहता समान समान। और एक बात यहां पर जो भूल गई है वो है, बाबा ने कहा क्या, पर्दा नहीं, विशेष प्रत्यक्षता क्या क्या, पर्दा, चादर, झंडा। प्रत्यक्षता का क्या, जिसमें छिपा हुआ है, कर्टन, पर्दन, कर्टा, चादर, नहीं किसमें छिपा हुआ है, बादल, बादलों में प्रत्यक्षता छिपी हुई है, तो उसको प्रकट करो तो वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, बादल। तो और आज की मुरली से कुछ, आज दूसरा काम दे रहे हैं, जो भी सारे दिन की मुरली होती है एक भी पॉइंट मिस ना हो, बस ये लक्ष्य रखना, एक भी पॉइंट। छोटा सा काम है आशीष भाई, एक भी पॉइंट मिस ना हो, चाहे भारतीय विद्या मंदिर, विद्या भवन भवन हो या और कुछ भी हो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं, सब उसमें सब ये क्या, कौन सा मिरुआ मौत, मल्लुक का शिकार, शिकारी जो होता खुश होता है, जो मर रहा है वो दुखी होता है, शिकारी को खुशी है क्योंकि उसने मारा ना, उसके लिए मोर है, मिरुआ अर्थात शिकारी के लिए खुशी है, और जो मलुका है वो जो शिकार है उसके लिए दुख है। तो संसार का शिकार होगा, हम खुश होंगे क्यों? क्योंकि स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। अच्छा ही होगा, इससे ही, इस विनाश से ही जय जयकार के द्वार खुलने हैं। कल भी बोला था उनका भी कल्याण होगा। तो लक्ष्य रखना है जो साकार मुरली है सारे दिन की, सारे दिन भर इसका थोड़ा थोड़ा चिंतन करते रहना, टुकड़ा टुकड़ा चिंतन करते रहना। ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, काम पूरा हो गया। पॉइंट निकाल के रख देना, खाली पॉइंट्स लिखो बस, लंबे लंबे स्टेटमेंट्स लिखने नहीं है, ओनली पॉइंट्स। कल की मुरली में ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। वो है कौन सा विद्या भवन? भारतीय विद्या भवन। ये है रूहानी विद्या भवन। अगर भारतीय विद्या भवन में वो है तो रूहानी विद्या भवन में क्या क्या है? ये बाप का स्थापन किया विद्या भवन है, इसमें क्या है? वो किसने स्थापन किया था? मुंशी जी, महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में। ये किसने स्थापन किया? 36-37 में। वो पहला कब स्थापन किया? राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में। ये कब हुआ दिल्ली में? कंपैरिजन करो इधर उधर, वहां क्या है यहां क्या है। तो इस तरह से मुरली में जो भी पॉइंट आता है उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ना, उसको उठाना, उसको वहां से पहले तो खींच के निकलने से और फिर उसको देखना और उसका चिंतन करते रहे। तो सारे दिन भर चिंतन होते रहे ताकि बुद्धि व्यर्थ में ना जाए, झरमोई झगमोई में ना जाए, गॉसिप्स में ना जाए, पर चिंतन में ना जाए, ज्ञान का ही रमन करते रहे। और जब श्रीमत का पालन किया जाएगा तो ऊपर से फूलों की वर्षा होगी रात को सोते समय। आज भी कहा बाप की याद में सो जाओ, निद्रा जीत बनो, हे निद्रा को जीतने वाले गुड़ाकेश, ऐसा भी दिन आएगा। आज बोला है, शायद बोल दिया, परहैप्स, कदाचित। हाँ, बस चिंता नहीं करते। एक दिन तुम ज्ञान में मस्त हो जाओगे, ज्ञान में मस्त हो जाओ, ज्ञान की मस्ती चढ़ जाए, वो भी सेफ हो जाओगे। तो ज्ञान की मस्ती चढ़ जाए एक एक आत्मा को, ज्ञान में मस्ती है, बहुत नशा है। दादी कहती थी कि हम लोग रात रात भर सुनते रहते थे यज्ञ की कहानियां, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बाबा ने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, हमको टाइम ही नहीं था दूसरा कुछ सुनने के लिए, हम मस्त थे, मस्त कलंदर। उधर पार्टीशन हो रहा है, कुछ खबर नहीं, लाशों से भरी ट्रेन आ रही है, कोई लेना देना नहीं, लड़ रहे लोग, रक्त की नदियां बह रही है, इनको पता ही नहीं, पार्टीशन हो गया पता ही नहीं, करेंसी बदल गई पता ही नहीं, कुछ पता नहीं, ऐसा रूहानी नशा। ओम शांति।
तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती हैं, तेरे प्रकाश की किरणें बाबा पथ दिखलाती है। इस दुनिया की सारी बातें भी किसी पड़ जाती है, इस दुनिया की सारी बातें भी किसी पड़ जाती है, तेरे प्रकाश की किरणें पत्ते। दिखला।